नमाज़े नबवी में से आज हम जिस चैप्टर में से कुछ अमल की बातें लेंगे उसका नाम है नमाज बा जमात, यानी जमात की नमाज का क्या हुक्म है। तो इसमें से पहली चीज़ जो हमने सीखी वो क्या है कि मर्दों को बग़ैर किसी मजबूरी के मस्जिद में जमात पढ़ने से पीछे नहीं रहना चाहिए। अगली बात हमने देखी कि अगर कोई बिला वजह मस्जिद की जमात से पीछे रहता है तो वो फितने में पड़ जाएगा। अगली बात हमने इसमें देखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बीमार आदमी भी दो लोगों के सहारे पर नमाज के लिए मस्जिद में आता था। अगली बात, जमात की नमाज अकेली पढ़ी हुई नमाज से 27 दर्जे ज़्यादा सवाब होता है। फिर अगली बात हमने देखी कि जमात की नमाज के लिए मस्जिद में ना आने वाले मर्दों पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आता था कि आपने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अजान कहलाऊं और किसी शख्स को इमामत के लिए कहूं और मैं उन लोगों के घरों को जला दूं जो जमात की नमाज के लिए हाजिर नहीं होते। और ये बुखारी की रिवायत है। अगली बात हमने सीखी कि नाबीना शख्स भी अगर अजान की आवाज़ घर तक सुनता है तो वो भी मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगा। सोचिए जरा आंखों वालों का फिर क्या हाल होगा। अगली बात हमने सीखी औरतों के मस्जिद में जाने के बारे में कि औरतों को मस्जिद में नमाज के लिए आने से नहीं रोकना चाहिए। ये भी सही बुखारी की रिवायत भी है और अबू दाऊद में भी ये रिवायत है। अगली बात हमने सीखी कि औरत का कमरे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और इसका कोठरी में नमाज पढ़ना खुले मकान में नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये हुक्म पर्दे के मुतल्लिक है, नमाज के मुतल्लिक नहीं है कि औरत जितना बाहर दूर जाएगी उतना ही ज़्यादा उसकी बेपर्दगी और उसके इजहार का डर है, फितने में पड़ सकती है, लेकिन घर के अंदर छुप के पड़ेगी तो उतनी ही ज़्यादा वो सिक्योर होगी। बस लोग इस मसले को पेश करते हैं औरतों के मस्जिद में ना जाने पे, लेकिन इससे पहले वाली रिवायत शायद उन तक नहीं पहुंचती कि जिसमें औरतों को मस्जिद में जाने के लिए मना ना किया जाए, बल्कि एक सहाबी के बेटे ने कहा हम तो मना करेंगे, तो वो इतने नाराज़ हुए कि गुस्से का इजहार किया कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूँ और तुम उस पर अपनी बात करते हो। अगली बात यह कि औरत मस्जिद जाएगी तो खुशबू लगाकर नहीं जाएगी। कौन सी खुशबू जो उड़ती हुई हो, और ये तो कहीं भी नहीं लगा सकती, घर में रहे तो लगाएगी, लेकिन बाहर जाके और खुशबू लगाना और इस तरह के काम करना ये दुरुस्त नहीं है। फिर अगली बात नमाज की जमात के बारे में जो हमने सीखी कि अगर किसी को कज़ाए हाजत की तलब हो, यानी बाथरूम में जाने की हाजत हो, तो पहले फारिग हो जाए फिर नमाज पढ़े, वरना तवज्जो नहीं रहेगी। फिर अगली बात, जो शख्स अजान सुनकर मस्जिद में जमात के लिए बग़ैर किसी उजर के ना जाए और घर में नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। दलाइल सारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब में। अगली बात हमने देखी कि जिस जगह 3 आदमी हों और वो जमात से नमाज ना पढ़ें तो इन पर शैतान गालिब होता है। शैतान गालिब होगा तो कोई गलत काम ही करवाएगा ना, फिर कोई अच्छी चीज़ तो नहीं वो देखेंगे या सुनेंगे। फिर अगली बात हमने सीखी कि जब शाम का खाना तैयार हो और नमाज का वक्त हो जाए तो पहले खाना खाओ और खाने में जल्दी ना करो, यानी अगर किसी वक्त ऐसी सिचुएशन हो तो खाना खा के फिर नमाज के में शामिल हुआ जा सकता है। अगली बात हमने देखी कि मौसम की खराबी की वजह से घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त अल्लाह के नबी ने दी। अगले मसाइल जो हमने इस चैप्टर में देखे वो सफ़ों के बारे में थे। तो सफ़ को सीधा करना इस्लाम का एक रिचुअल है। अगली बात देखी कि अल्लाह के नबी खुद सफ़ों को सीधा करवाया करते थे और आप किसी के अगर आगे कोई बड़ा होता और कोई पीछे होता तो उसको बराबर करते। फिर इसी तरह अगली बात सीखी कि सफ़ों का टेढ़ा होना दिलों के अंदर इख्तलाफ और कदूरत को पैदा करता है। फिर अगली बात हमने देखी कि सफ किस तरह मिली हो, कि कंधे से कंधा और कदम से कदम मिले हो, और अगर कहीं बीच में गैप हो तो आपने कहा कि शैतान जो है वो उन गैप्स के अंदर ऐसे आ जाता है जैसे बकरी का काला बच्चा। फिर अगली बात इस हिस्से में हमने सीखी कि सहाबे कराम इस हुक्म को सुनने के बाद इतनी कसरत से सफ सही बनाते थे और करीब आते थे कि गोया कैसे लगता था कि जैसे एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो। अगली बात कि पहली सफ में खड़ा होना इसका अजर है कि अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत भेजता है और फरिश्ते भी उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आप देखिए कि इसके लिए वक्त पे जाना पड़ता है ना, जो लोग शुरू में जाएंगे वो आगे बैठेंगे और जो पीछे जाएंगे वो बाद में आएंगे, तो इसी तरह बाद में आके सफ़ों को चीर के आगे नहीं जाना, ये अमल दूसरों को तकलीफ़ देता है। फिर अगली बात हमने सीखी कि पहली सफ पूरी होने से पहले दूसरी सफ में नहीं खड़ा होना चाहिए। फिर अगली बात हमने सीखी कि मर्दों की सफ़ों में अगली सफ़ें सवाब के एतबार से बेहतर हैं और औरतों की सूरत में सबसे आखिरी सफ़। ये कब होगा? जब मर्द और औरतें एक ही जगह पे नमाज पढ़ेंगे। पहली सफ में मर्दों से इख्तलात होने का डर होगा ना, तो जितनी पीछे होगी तो इख्तलात कम होगा। इख्तलात से मुराद ये कि मिक्सिंग। इसके बरक्स जब औरतें अकेली अपने प्रेइंग रूम में पढ़ें जहाँ मर्द नहीं, तो फिर उनके लिए भी वही हुक्म है कि पहली सफ ही बेहतर होगी। फिर अगली बात कि जो लोग पहली सफ से पीछे हटते हैं अल्लाह उनको अपनी रहमत से पीछे हटा देता है। दुनिया में भी अब देखिए हम आगे बैठना चाहते हैं ना, अगली जो सीट्स होती है उनकी ज़्यादा टिकट होती है जहाँ को बड़े बड़े शोज़ होते हैं। जब नमाज में बंदा आगे जाता है तो उससे इंशाल्लाह फोकस भी ज़्यादा होता है और अल्लाह के हुक्म से फिर उससे फ़ायदा भी इंसान ज़्यादा हासिल करता है। अगली बात कि सफ के पीछे अकेले शख्स की नमाज नहीं होती, आपने ऐसे शख्स को दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हाँ, अगर ऐसा हो कि पहली सफ पूरी हो चुकी है और एक शख्स अकेला रह गया, फिर उस सूरत में वो सफ के बीच में खड़ा होकर अगली सफ को शुरू कर सकता है। फिर अगली चीज़ है कि सफ में से किसी को खींच के पीछे करना, ये भी सुन्नत से साबित नहीं। कुछ लोग ऐसा अमल करते हैं, खुद ही अगर कोई देख के वॉलेंटियरली ऐसा करे कि भाई पीछे कोई एक शख्स रह गया तो चले मैं अगली सफ के अंदर जाने और उनको तंग करने के लिए अगर पीछे खड़ा हो जाऊं तो वो दुरुस्त है, लेकिन अदरवाइज खींचना नहीं चाहिए। फिर अगली बात यह है कि इमाम के करीब सफ में जो लोग हों वो दीन के एतबार से ज़्यादा समझ वाले हों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वजू टूटने की सूरत में फिर इमाम को निकलना पड़ता है और मुक्तदियों में से किसी एक को आगे आना पड़ता है, तो उसके पास जो लोग होंगे वो दीनी और अकली हिसाब से जब मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो उसकी जगह ले सकेंगे। अब सब पढ़ने का तरीका क्या है इसको हम प्रैक्टिकली देख लें। बहुत सारी खराबियां इसमें देखी जाती हैं, स्पेशली वो खवातीन बेचारी जिनको शुरू से ट्रेनिंग नहीं होती, वो और मर्द भी बहुत सारे ऐसे ही होते होंगे, उनको तो हमने नहीं देखा। लेकिन सफ पूरी करना बहुत लाजमी है। बस लोग मस्जिद में आते हैं उनको समझ नहीं आती हम कहाँ से सफ शुरू करें। कोई राइट साइड पे आके खड़ा हो जाता है, कोई उधर खड़ा हो जाता है, कोई इधर, और कोई इस तरह की कहानी। कुछ लोग तीन इधर खड़े हो जाते हैं, तीन इधर खड़े होते हैं। तो सफ का एक मकसद है, कान बुनजान मरसूस, सूरह सफ में ये आयत है। इसी से आप सफ़ों की अहमियत देख लें और मुसलमानों को अल्लाह ताला कितना ऑर्गेनाइज इंसान बनाना चाहता है। तो बेस्ट तरीका क्या है? अगर मर्दों में है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आगे इमाम खड़ा होगा, एक शख्स होगा तो वो मर्द इमाम के साथ खड़ा होगा राइट साइड पे। इमाम और एक मर्द हो तो इमाम खड़ा होगा और उसके राइट साइड पे मुक्तदी खड़ा होगा। इतने में एक और आ गया, जब अगला आएगा तो जो राइट साइड पे खड़ा था वो उसको पकड़ के पीछे ले लेगा और वो दोनों फिर इमाम के पीछे आ जाएंगे। फिर उसके बाद हर आने वाला राइट पे, अगला लेफ्ट में, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी सफ यूं फैलती है, मिडल से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसी तरह औरतों में अगर औरत किसी भी मस्जिद में आए और प्रेइंग रूम में जाए तो उसका तरीका यह है कि बिल्कुल मिडल ऑफ द जो आपका वो रूम होगा उसके खड़े हो, फिर दूसरे आने वाली उसके राइट में खड़ी हो, तीसरी आने वाली उसके लेफ्ट में, चौथी इधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जब वो रूम की विड्थ पूरी हो जाए, पूरी सफ खत्म, देन अगली आएंगी तो वो फिर उसके मिडल से शुरू होंगे। ये है एक मसनून अमल। पहले पहली सफ में जगह हो तो दूसरे सफ में नहीं खड़ा होना चाहिए। बाज लोग एक सफ में खड़े हैं, कोई आती है वो बच्चे वाली है, वो कहती नहीं मैं सफ में नहीं जाती, मैं अकेली खड़ी होती हूँ। ऐसा नहीं होता कभी भी। आप देखिए कि इस तरह की बेतरतीबी जो होती है फिर उससे वो बात नहीं बनती। फिर इसी तरह अगली चीज इसमें हमने ये सीखी कि अगर कभी बच्चे भी हों साथ तो क्या किया जाएगा, मर्द भी हैं बच्चे भी हैं, तो फिर उस सूरत में जब बहुत सारे लोग हैं तो क्या होगा कि पहले आगे इमाम होगा, फिर उसके बाद मर्दों की सफ बनेगी, फिर उसके बाद लड़कों की सफ बनेगी, और फिर अगर औरतें हैं तो फिर पीछे औरतों की सफ होगी। बाज दफा क्या होता है कि बच्चे ज्यादा हैं मर्द एक है तो क्या होगा, फिर वो बच्चों और मर्दों की सफ में ही होगा। और इसका ऑपोजिट भी है, कभी मर्द बहुत सारे हैं और बच्चा एक ही है या लड़का एक है तो वो भी मर्दों के साथ आएगा, लेकिन औरत बहर हाल सबसे पीछे होगी। ठीक है। और इसी तरह इसमें हमने देखा कि नाबालिग बच्चा भी अगर कुरान या इल्म के अंदर ज्यादा है तो वो इमाम बनेगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक ऐसा बच्चा था, अमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं बच्चा था लेकिन मुझे अपने कबीले में सबसे ज्यादा कुरान जाता, तो अब फिर मुझे इमाम बनाया गया और मेरी उम्र उस वक़्त 7 साल की थी। ठीक है, बच्चा है उसको तहारत के मसाइल पता होने चाहिए, उससे गलत नमाज ना उसकी नमाज ठीक हो, तो फिर बच्चे को भी इमाम बनाया जा सकता है। इसी तरह इसमें यह कि अंधे शख्स को भी इमाम बनाया जा सकता है, और इसकी दलील अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम है। फिर वो शख्स जिससे लोग उसकी बिदअत या उसकी किसी मासियत की वजह से नाराज हों, ऐसे इमाम के पीछे भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। फिर अगली बात यह है कि इमाम को चाहिए कि अगर पीछे बच्चे वाली माएँ हों तो नमाज को मुख्तसर कर दे। ये एक खूबसूरत अदब सिखाया गया। ये नहीं कहा कि बच्चों को माएँ लाएं ना, नहीं बच्चे आएंगे तो सीखेंगे ना। ये अलग बात है कि शुरू से जो बच्चे मस्जिदों में आने के आदी होते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाद में उनको आदत हो जाती है तो वो ज़्यादा नहीं रोते, लेकिन अच्छा अमल क्या है कि इमाम फिर उस वक़्त नमाज को मुख्तसर कर दे। किसी औरत के बच्चे के रोने की आवाज़ हो तो अल्लाह के नबी नमाज मुख्तसर कर दिया करते थे। इसी तरह अगली चीज़ क्या पता चलती है कि कोई शख्स जब इमामत कराए तो छोटी नमाज पढ़ाए, अकेले में पढ़े, नफिल पढ़े, सुन्नतें पढ़े तो लंबी पढ़े, लेकिन दूसरों के साथ छोटी पढ़े, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि वहाँ ज़ईफ़ और बूढ़े और कमज़ोर भी होते हैं, बल्कि सूरह मुज़म्मिल में तो एक पूरा अल्लाह ताला ने एक नक्शा खींचा है कि फ़क़्रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, और उसमें आगे कहा गया कि अल्लाह ताला जानता है कि तुम में बूढ़े भी हैं कमज़ोर भी हैं, तो अल्लाह ताला लोगों की रियायत करते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि छोटी नमाज करने का कि रुजदे और रुकू जो वही जल्दी जल्दी किए जाएँ, इससे मुराद है कि वो हिस्सा जहाँ तिलावत की जाती है सूरह फातिहा के बाद वाला हिस्सा रुकू में जाने से पहले का, उसके अंदर थोड़ी सी कमी की जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफसल नमाज वो है जिसमें क्याम लंबा हो। ये कब होता है? जब आपके अपने लिए है, लेकिन अगर कहीं फितने का डर हो तो फिर आप उस वक़्त नमाज को मुख्तसर कर सकते हैं। अगली बात इसमें हमने सीखी और वो क्या है कि नमाज के लिए सुकून से जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को देखा कि वो भाग भाग के नमाज के लिए जा रहा था और आवाज़ें आने लगी पीछे से, तो आपने कहा कि आराम से आओ। पहली बंदा वक्त पे निकले, अब घर से ही देर से निकले तो अब आके मस्जिद में जूता फेंक रहे हैं, इधर जा रहे हैं और टकरा रहे हैं, उसको टकरा रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। आगे घर से निकले, अब नमाज में शामिल हो गए, अब सुकून और वक़ार के साथ आए। फिर अगली बात आपने फरमाया कि उन इमामों पर वबाल है, यानी वो नमाज पढ़ाने वाले के जिन्होंने नमाज के अंदर रुकू क़याम सजदों को इतना छोटा कर दिया कि वो यानी दूसरे लोग फॉलो ही नहीं कर पाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि नमाज ही ठीक नहीं पढ़ाई जाती, अभी अब सीधे नहीं हुए होते तो इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं, अभी आप रुकू में जाने का सोच रहे होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। तो फरमाया कि मुक्तदियों के लिए तो सवाब है लेकिन इमाम के लिए ऐसी नमाज वबाल है। फिर अगली बात है कि अगर इमाम बेवजू हो या खुदा ना हज़ा जुनाबत की हालत में नमाज पढ़ा दे या कोई और उसके ऊपर ऐसी उजर हो, तो इमाम तो गुनाहगार होगा और उसकी नमाज नहीं होगी लेकिन मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। बाद जब हम शक करते हैं ना फलां ने सही पढ़ी या नहीं, उसका वजू था कि नहीं, तो फिर उसका तरीका ये कि उसका मामला उसके साथ है लेकिन आपकी नमाज होगी। जिस चीज़ पे हमारा कोई कसूर ही नहीं, हमें पता ही नहीं एक बंदा वजू से है कि नहीं, उस पे अल्लाह ताला दूसरों को फिर क्यों पकड़ेंगे। फिर अगली बात है कि नमाज पढ़ाने के बाद इमाम मुक्तदी, मुक्तदी कौन होते हैं नमाज पढ़ने वाले फॉलोअर्स, उनकी तरफ मुंह करके देखे। आप राइट साइड से भी मुड़ के पलटते थे, बस सबने साथ पढ़ी, अब इमाम पलटे। इस हद तक सहाबा कराम ने चीज़ें नोट की हुई हैं कि आप राइट साइड से मुड़ते थे या लेफ्ट साइड से मुंह करके बैठते थे, दोनों तरह के दलाइल मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप पलट के फिर मुक्तदियों की तरफ बैठते और फिर कोई भी बात होती तो उसे की जाती। फिर अगली बात कि इमाम से पहले कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि मुझे डर लगता है उन लोगों को कि जो इमाम से पहले सजदे से सर उठा लेते हैं कि कहीं उनके सर गधे के सर ना बन जाए। और एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख में कि वो बहुत सर लपेट के और इस तरह इल्म सिखाया करते थे, तो लोगों ने जब एक दफा उसकी वजह पूछी तो कहते हैं कि मैंने इस मसले में शक किया था और अल्लाह ने मेरा सर ऐसा कर दिया। यानी उनके सर में ही अल्लाह ताला ने इस तरह का कुछ कर दिया था, कुछ ही निशानी के गधे के सर की तरह बन गया था, और वो कहते हैं कि मैंने शक किया था। तो इमाम से पहले सजदे से उठना या कोई भी एक्शन पहले करना, ये चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं। फिर इसी तरह जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ते हुए दुआ लीन कहे तो उसके बाद मुक्तदी आमीन कहेंगे। और आपने कहा कि जिसकी आमीन पे फरिश्तों ने आमीन कह दिया तो उसकी दुआ कबूल होगी। फिर जब इमाम समय अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो मुक्तदी कहेंगे रब्बना व लकल हम्द। फिर अगली बात हमने इस हिस्से में सीखी कि इमाम अगर कोई गलती करे तो मर्दों में जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो सुबहान अल्लाह कहेंगे, तो फौरन वो समझ जाएगा कि मैंने कोई मिस्टेक की है। और अगर औरतें उस गलती को नोट करें तो वो हाथ से बजाना। अब ये तालियां पीटना नहीं, बस एक जैसे टिक की आवाज़ है या कोई आपके हाथ में चीज़ है इस तरह की आवाज़ के, जिससे उसको पता चल जाए कि मैंने दुरुस्त नहीं किया। बाज़ लोगों ने यहाँ से तालियां बजाना जायज़ कर रहा और पता नहीं कहाँ कहाँ मसले चले जाते हैं। तो सिंपल बात ये कि औरत आवाज़ निकालेगी, फितना होगा। बाज़ लोगों ने इस बात को औरत की आवाज़ के पर्दे पे दलील दी कि देखें वो तो नमाज में ताली बजाएगी तो फिर वो आवाज़ कैसे आएगी। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करने वाली बात है। औरत की ताली में ज़्यादा कशिश हो सकती है उसकी आवाज़ से बाज़ दफ़ा उसका अपना महरम ही गलती करता है, तो फिर तो आवाज़ के मसले की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सिर्फ ये कि औरत को अल्लाह ताला ने एक ऑनर दिया, फ़र्क रख दिया मर्दों से दूसरी तरफ। और फिर ऐसी बातों से पता चलता है कि इस्लाम में औरत और मर्द के लिए दीन के अहकाम जो हैं तकरीबन एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि कोई उजर ना बीच में हो। फिर अगली बात इसमें हमने औरतों की इमामत के लिए सीखी, और वो क्या थी कि औरत नमाज जमात से कराएगी तो सफ के बीच में खड़ी होगी, औरत आगे नहीं खड़ी हो सकती। यानी जैसे मर्द तो बिल्कुल अकेले आगे खड़े होते हैं फिर मर्द शुरू होते हैं, औरत औरतों की जमात में रहेगी। किस सूरत में? कि उसकी राइट साइड पे ज्यादा लोग होंगे और लेफ्ट साइड पे कम होंगे। मसलन चार लोग हैं, एक नमाज पढ़ा रहा है, एक है, दो खवातीन इधर होंगी और तीसरी साइड पे होंगी। ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए। और अल्लाह के नबी अहाबियात को इसका हुक्म भी दिया करते थे। उम्मे वरका का हुक्म मिलता है कि वो अपने घर वालों की इमामत कराती थी। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हु औरतों की इमामत कराया करती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में नमाज पढ़ी और लोगों ने आपके बाहर पढ़ी। इससे क्या मसला मिलता है कि इमाम नजर ना आ रहा हो, सिर्फ उसकी आवाज़ अगर आ रही है तो भी नमाज होगी। जैसे अमूमन आजकल मस्जिदों में होता है, खवातीन के जो प्रेइंग रूम है वहाँ स्पीकर सिस्टम तो होता है लेकिन नज़र नहीं आता, तो इसकी भी दलील हमें मिल जाती है। फिर अगली बात कि अगर इमाम और मुक्तदियों के बीच में कोई दीवार आ जाती है तो उसकी नमाज होती है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई नमाज में गलती करता है तो इमाम उसकी इसलाह कर सकता है। यानी एक मौका ऐसा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे बच्चे थे, अल्लाह के नबी के घर में थे, आप नमाज पढ़ने खड़े हुए तो जाके ये भी खड़े हो गए जमात में। अब इनको पता ही नहीं था ये बेचारे बाईं साइड पे खड़े हो गए लेफ्ट साइड पे, तो अल्लाह के नबी ने इनके कान से पकड़ के अपने पीछे से घुमा के इनको अपने राइट साइड पे किया। आगे से नहीं गुजरेंगे, देखे इमाम के आगे से नहीं गुजरेंगे, पीछे से पकड़ा। कहते हैं और इस तरह और भी मौके में ऐसा हुआ। तो इससे पता चलता है कि अगर मुक्तदियों में कोई गलती करे तो इमाम उसकी इसलाह जो है वो कर सकते हैं। अगर दो नमाज पढ़ने वाले हैं तो एक इमाम के इधर खड़ा हो रहा है लेकिन दो होंगे तो फिर वो दोनों पीछे हो जाएंगे। फिर इसी तरह औरत कभी भी इमाम के साथ नहीं खड़ी होगी। मसलन देखें कि एक इमाम है और एक मर्द और एक औरत है नमाज पढ़ने वाले, ये नहीं होगा कि इमाम के एक तरफ मर्द खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ औरत, औरत अकेली भी पीछे ही पड़ेगी। फिर उसके बाद अगली चीज़ कि एक मौके पर अल्लाह के नबी बीमार थे तो नमाज का जब वक्त हुआ तो अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए खड़े हुए, तो आप ज़रा सी अपनी तबीयत में आसूदगी जब पाते तो आपने दो सहाबा के कंधों पे हाथ रख के मस्जिद में वापस आए। अबू बकर सिद्दीक ने जब आपकी आमद को महसूस किया तो पीछे हटना चाहा, तो आपने उनको इशारा किया कि पीछे ना हटें। फिर आप अबू बकर सिद्दीक की लेफ्ट साइड पे बैठे और आपने बैठ के नमाज पढ़ी और अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। अबू बकर अल्लाह के नबी की इक्तदा करते, यानी अल्लाह के नबी पढ़ते तो अबू बकर उसको फॉलो करते और अबू बकर को फिर लोग फॉलो करते। ये जोहर की नमाज थी। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक को ये एक ऑनर हासिल हुआ था कि जाए नमाज पे आप उनके साथ रहे थे। फिर अगली बात हमने देखी कि अगर कोई शख्स किसी जगह जमात से नमाज पढ़ता है, अब घर जाके अपने घर वालों को भी जमात से पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है। हज़रत माज जो थे वो अल्लाह के नबी के साथ नमाज़ पढ़ते थे, फिर उसके बाद अपनी कौम के पास आते तो वहाँ फिर जमात कराते। इस सूरत में फिर पहली नमाज एक फ़र्ज़ हो जाएगी और एक नमाज उसके लिए नफिल हो जाएगी। इसी तरह एक और बड़ा प्यारा इस्लाम का हुसन है, और वो क्या कि अगर कोई देर से मस्जिद में गया, नमाज हो चुकी, अब क्या किया जाए। तो अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा मौका आया तो आपने कहा तुम में से कौन है जो अपने भाई के हक में सदका करे। कहा वो कैसे। कहा तुम में से कोई इसके साथ मिल के इसकी जमात करवा दे तो इसकी नफिल हो जाएगी, उसकी फ़र्ज हो जाएगी। तो अब देखिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन देता है ना, कि जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, जिसमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत की जाती है। अब ये तो कुछ अमूमी बातें नमाज की थी, इसी तरह कुछ और बातें जहन में आती हैं। मसलन अल्लाह ना करे एक नमाज कज़ा हो चुकी थी, हो रही थी, मस्जिद में गए, साथ ही दूसरी नमाज का वक्त आ गया, अब क्या किया जाए। तो इसका तरीका क्या है कि आप मस्जिद में गए, जमात खड़ी थी, तो आप पहले वो ही नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी नमाज पढ़ेंगे। फिर इसी तरह एक और सवाल है, एक से ज़्यादा कज़ा नमाजें हों, मिसाल है किसी वजह से, अब ये मैं ये नहीं कह रही कि ये रुख्सतें हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन मरहला है कि किसी की नमाज कज़ा हो, लेकिन अगर किसी की हो तो फिर तरतीब से उसको पढ़नी चाहिए। यहाँ बहुत ही अहम मसला है। बस दफ़ा आप मस्जिद में गए, मस्जिद में जमात हो चुकी थी या पूरी होने वाली थी, अब आपने फ़र्ज भी पढ़ने हैं और तरावियां भी पढ़नी है, अब क्या करेंगे। आप खुल के सुनने की बात है, गलती ना करें आप इसमें। बस पहली तो बात है कि आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि हमेशा वक्त पे आए, लेकिन हमेशा आइडियल सिचुएशन रहती नहीं। किसी मजबूरी से आप गए मस्जिद में, देर से जाएं, जमात में शामिल होने का तरीका भी समझ लें। वो शायद इस बुक में इतना वाजे नहीं होगा तो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में भी बता देती हूँ कि मस्जिद में आप गए, कोई भी नमाज है, आप तरावियों को भूल जाएं एक लम्हे के लिए, कोई भी नमाज है, जो काम बाकी लोग कर रहे हैं ना इमाम की मैयत में आप भी वही करें। वो खड़े हैं तो आप उनके साथ खड़े रहें, मुतमईन हो, पूछे ना क्या हो रहा है, बस अल्लाह अकबर कहना लाजमी है। वैसे खड़े हो गए तो आपकी नमाज नहीं होगी, जाके खड़े होके अल्लाह हो, ये जो एक फर्स्ट है ना इस्तफ्ताह जो होता है, जो खड़ा होना, ये करना लाजिम है। इसके बाद आप जो वो कर रहे हैं वही करें, अगर वो रुकू में थे तो रुकू में जाएं, सजदे में तो सजदे में जाएं, पूरी नमाज पूरे सुकून के साथ उनके साथ पढ़ें। उसके बाद सलाम फेरने से पहले तक आप साथ ही रहेंगे, उसके बाद जब सारे लोग सलाम फेरेंगे अब आप सलाम नहीं फेरेंगे। अब आप एक छोटा सा मेयार ज़हन में रख लें कि मैंने कितनी दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ी है। एक सिंपल सी बात है जो कम पढ़े लिखे को भी याद रहेगी और बच्चे को भी याद रहेगी। काउंट करें अपने माइंड में कि मैंने कितनी पढ़ी। अब अगर आप चार फर्जों के लिए गए, आपने दो दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ी है तो आपके दो रकत हुई हैं, तीन दफ़ा पढ़ी है तो तीन हो गई हैं, और चार दफ़ा पढ़ी है तो पूरी हो गई है। जितनी मिसिंग थी ना सलाम फेरे बगैर आप दोबारा खड़े हो जाएं। अब इसके बाद अब आपकी अपनी तरतीब शुरू हो गई, पहले तीन पढ़ी थी तो अब जब आप खड़े हुए तो ये आपकी तीसरी होगी, आपने पहले एक पढ़ी थी अब ये आपकी दूसरी होगी, इसके मुताबिक आप अगले तशहुद और सलाम करेंगे। ठीक है, यानी ये चीज़ बहुत कम लोग इसको समझते हैं। बाद लोग आते हैं जल्दी जल्दी अपनी पढ़नी शुरू करते हैं फिर उसके साथ मिलते हैं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। इसके बाद दूसरा मसला है कि आप नमाज के लिए मस्जिद में गए, तरावी के लिए फ़र्ज भी हो गए थे, इमाम साहब आखिरी रकत में थे, जो ही इमाम रकत में उस वक्त तो फ़ौरन मिल जाए, इवन आपने फरमाया कि जिसने एक रकत भी पाई उसने जमात पा ली, आप सिर्फ आखिरी एक्शंस में भी जाके मिल जाते हैं ना। सलाम फेरने से पहले के वक्त आप गए, सब लोग तशहुद में थे, अल्लाह अकबर कह के जाके बैठिए, आप भी उनके साथ मुतमईन होकर बैठे, उसके बाद खड़े हों अपनी रकत पढ़ लें, चारों रकतें पढ़ लें, उसके बाद इमाम साहब टाइम देते हैं जो सुन्नतों का, उस वक्त लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं, उसी दौरान आप अपने फ़र्ज़ पढ़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए तो फ़र्ज़ों की सलाम फेरी गई, अब क्या करें। अब आपके पास दो तीन क्वेश्चन है, क्या फ़र्ज़ नमाज पढ़ूँ, अच्छा क्या फिर मैं तरावी पढ़ूँ कि पहले सुन्नतें पढ़ूँ, इसके लिए क्या आप करेंगे कि आप इंतज़ार करें बैठे। इमाम साहब जब तरावी शुरू करेंगे ना, आप उस पहली तरावी में या जो भी उसके बाद आपके वो तरावी पढ़ा रहे हैं, इवन वो बीच में दो तीन तरावियाँ पढ़ भी चुके हैं अगर, तो आप नियत करेंगे अपने दिल में अपने फ़र्ज़ों की, चार फ़र्ज़ इशा के, इमाम साहब के साथ पूरी दो तरावी तक साथ रहें, फिर एंड पे वही करें, वो सलाम फेर लेंगे, आप सलाम नहीं फेरेंगे, आप खड़े होके फिर दो रकत अपनी पढ़ेंगे। इस तरह वो दो तरावी पढ़ने के दौरान आपने, उन्होंने हो सकता है उस दौरान अगली दो तरावी शुरू कर दी है, आप अपने ये चार फर्ज पूरे करें। इसके बाद फिर सुन्नतों की परवाह ना करें, जो हम दो सुन्नतें पढ़ते हैं उसके बाद फिर ईमान के साथ फॉलो करें। बाज़ लोग ज़्यादा ही तरकत पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बाद आप अपनी तरावी पढ़नी शुरू कर दें, आठ तरावी जहाँ आपकी पूरी हो, फिर उसके बाद आप आखिर में अपनी दो सुन्नतें पढ़ें या वितर पढ़ें, कुछ भी है, लेकिन यह है कि जमात के अंदर दाखिल होने का ये एक तरीका है।